चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वित्तीय विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य और हरवीर सिंह। परिचर्चा का संचालन पत्रकार अदिति फड़नीस कर रही हैं।
जब से नया वर्ष शुरू हुआ है बैंकिंग क्षेत्र में खासतौर से बुरी खबर ही आ रही है। धोखाधड़ी, फ्रॉड, फर्जीवाड़ा, इस तरह के शब्द एक ऐसे सेक्टर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे कि लोगों के मन में शक, भय और संशय बैठ गया है कि हमारे देश में बैंकिंग में हो क्या रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं जिनका काफी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा इस क्षेत्र में। अगर हम एक तरह से देखें तो जनवरी में ही घोषणा हुई थी कि लगभग 90,000 करोड़ रुपए की पूंजी सरकार इस क्षेत्र में लगाएगी पुनर्पूंजीकरण करने के लिए। उसके अलावा ये भी खबर आई थी कि बैंकिंग ब्यूरो बोर्ड, जिसमें बड़े अफसर उसके सदस्य हैं, उसको फिर से बनाया जाएगा और उसके कई जो रिकमेंडेशंस हैं वो देश में बैंकों पर लागू होंगे। भट्टाचार्य जी, आप बताइए कि हमारे देश में बैंकिंग रिफॉर्म की क्या जरूरत थी?
बैंकिंग रिफॉर्म या सुधार जिसे हम कहते हैं वो एक बहुत जरूरी चीज है। जब हम देखते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था थोड़ी बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई का मतलब यह है कि जो हमारे बैंकिंग व्यवस्था में, जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, इसका मतलब जो लोगों को कर्जा दिया जाता है उस कर्जे की वापसी अगर 90 दिन में वो नहीं होती उनकी इंस्टॉलमेंट की, तो हम उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करार करते हैं। तो ऐसे ऋणों की वैल्यू जो है वो काफी बढ़ चुकी थी, वो करीबन 9 लाख करोड़ तक आ चुकी थी। और अगर आप देखें तो बैंकिंग व्यवस्था में करीबन 90 लाख करोड़ की लोन्स हैं, उसमें अगर 9 लाख करोड़ की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं तो 10% का समझ लीजिए आप एक एनपीए बढ़ गया, वो काफी बहुत झटका है। उसको सुलझने के लिए सरकार ने काफी स्टेप्स लिए थे। पहला तो स्टेप ये था जिसे इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था 4R, उन्होंने कहा था कि रिकग्निशन ऑफ बैड एसेट्स, वो पहली बात है। वो रघुराम राजन के जमाने में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, उन्होंने काफी रिकग्निशन के बारे में एक तत्परता दिखाई थी। दूसरा था रेजोल्यूशन ऑफ एसेट्स, जो लोन्स खराब हो गए हैं जिन कंपनियों के पास गई है उस कंपनियों से किस तरह से उसको लोन को वापस लिया जाए,
जिन कंपनियों में सामर्थ्य नहीं है कि वो पैसा वापस दे पाए,
तो वो भी काम अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट जब चालू कर दिया गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के जरिए काफी काम हो रहा है, कुछ अटकलें दिखाई दे रही हैं पर काम चालू हो गया है। तीसरा जो था वो रिकैपिटलाइजेशन, जो आप कह रहे हैं कि पुनर्पूंजीकरण, 2,11,000 करोड़ की बात की गई थी, उसमें 90,000 करोड़ में जैसे आपने कहा वो आ गई है। चौथा जो आर था वो था रिफॉर्म यानी सुधार। मेरा मानना यह है कि हम पहले तीनों चीजों में जितनी तत्परता दिखाई हमने, वो तत्परता हम चौथी सुधार की जो कार्यक्रम है उसमें हमने अभी तक नहीं दिखाई है। और अगर आप सुधार की बात करें तो मुझे लगता है कि न मैनेजमेंट की सुधार हुई है, न नियंत्रक की सुधार हुई है, न सरकारी ओनरशिप पैटर्न की सुधार हुई है, और न ही बैंकों की हमारी जो व्यवस्था में जो इसकी प्रतिपत्ति है उसकी सुधार हुई है। तो मैं मानता हूं कि सुधार के दृष्टिकोण से देखें आप तो हम पीछे हैं, पर हमने पहले तीन जो रिकग्निशन ऑफ बैड एसेट्स, रेजोल्यूशन ऑफ बैड एसेट्स, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैड एसेट्स, हम काफी कदम ले चुके हैं। हालांकि रिकैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट्स में भी रिफॉर्म की कमी हमें दिखती है, पर जब तक हम सुधार की दृष्टिकोण से और भी जल्दी कदम बढ़ाएं तब तक मुझे लगता है कि एनपी का जो समस्या जो है उसका हल इतनी जल्दी नहीं आ सकेगा। वैसे ही एनपीए की समस्या काफी जटिल होती है और ये समस्या इतनी जल्दी हल नहीं होती क्योंकि अर्थनीति के साथ जुड़ी हुई है।
एक सुझाव था कि बैंकिंग के लिए एक बैंक होल्डिंग कंपनी का गठन किया जाए। ये होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो बैंकों की सारी समस्याओं का एक समय पर और एक ही जगह निदान करेगी।
ये अच्छा सुझाव है। अगर राजनीति और अर्थनीति के दृष्टिकोण से देखें तो एक हाफवे रिफॉर्म है, मेरे ख्याल से पूरी तरह रिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इससे हम क्या उपलब्धि करेंगे। सरकार जो है हमारे देश में, बहुत कम देशों में ऐसा दिखता है कि 70% बैंकिंग सरकार के दायरे में है, यानी सरकारी मालिकाना है उसके अंदर। उससे क्या होता है कि जो सरकार की जो एक इन्फ्लुएंस होती है वो आप चाहे ना चाहे जो ऐलान कर दे या ना ऐलान करे वो इन्फ्लुएंस रहती है, और वो इन्फ्लुएंस को दूर करने के लिए एक हम कहते हैं कि डिस्टेंसिंग, कि दूरत्व व्यवधान कैसे बनाए रखें। तो ये बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो का सुझाव था, जो कि पीजे नायक कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था कि एक होल्डिंग कंपनी तैयार की जाए, जिस होल्डिंग कंपनी के पास सारे बैंकों के शेयर रहेंगे और सरकार ये होल्डिंग कंपनी को अपने पास रखेगी, और होल्डिंग कंपनी आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये सारे बैंकों के जो शेयर्स धीरे धीरे बाजार में बेचती रहेंगी, और निजीकरण का जो मुद्दा है, जो एक एजेंडा है, उसके और भी हम अग्रसर होंगे। पर ये जो एक नया प्रपोजल है, अभी प्रपोजल को कहते हैं कि इसको रिवाइव किया गया है, पर मुझे लगता है कि समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। अगर हम बैंकिंग के सुधार को लाना चाहें तो एटलीस्ट पहला कदम के स्वरूप हमें ऐसी डिसीजन जरूर जल्दी लेनी है। पर मेरा मानना यह है कि इससे ही काम नहीं होगा, उससे पहले हमें एक बैंकिंग कंसोलिडेशन का एजेंडा को भी आगे बढ़ाना है। अभी हमारे पास करीबन 24 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कोई भी सरकार के पास 24 बैंकों को देखभाल करना, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में सिर्फ 65 अधिकारी हैं, वो किस तरह से बैंकों की देखभाली करेंगे? वो तो शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। उधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी जो इस प्रणाली जो है वो अभी सुदृढ़ नहीं हुए मेरे हिसाब से। तो ऐसे हिसाब से पहला स्टेप ये होगा कि ये बैंकों को कंसोलिडेट करके मेरे ख्याल से 5 या 7 या 10 बैंकों के अंदर लाए, फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो के साथ ये नया होल्डिंग कंपनी तैयार करे और उससे जो ओनरशिप पैटर्न का परिवर्तन लाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये स्टेज्ड रिफॉर्म अगर सुधार हम कर सके तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी।
हरवीर जी, अभी जो धोखाधड़ी की खबरें आई हैं उससे जनमानस एक तरह से हिल गया है, क्योंकि हम लोगों का इतना विश्वास है सरकारी बैंक पर कि ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से पैसा कैसे गबन हो सकता था, किस तरह से धोखाधड़ी हो सकती है, लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कदम ले रही है कि इस तरह की धोखाधड़ी बैंक में न हो?
कई सारी जो संस्थागत मसले हैं और जो स्ट्रक्चरल जो मुद्दे हैं उनको अभी भट्टाचार्य जी ने काफी विस्तार से बताया। जो आपने कहा कि भरोसा जो डगमगाने की बात है, आप ये देखिए कि अभी भी 70-75% जो बैंकिंग का जो भी कामकाज या जो रिलेशन है कॉमन मैन का, वो सरकारी बैंकों के साथ में है। प्राइवेट बैंकों का दायरा अभी भी सीमित है और सरकारी बैंकों में लोगों का एक अलग तरीके से भरोसा रहा है, खासतौर से जो कॉमनर है।
विश्वास ये कि हर चीज तो फेल हो जाए, बैंक कभी
बैंक
फेल
नहीं होगा, क्योंकि सरकार उसकी मालिक है और सरकार देश चलाए, तो ये एक पहलू है। लेकिन उसके साथ ही आप ये देखिए कि जब ये पिछले दिनों पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला होता है, करीब 12,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का हो गया अब तक का जो मामला है, जो जानकारियां सामने आ रही है बहुत आराम से ये काम कर ले रहे थे, फिर जो सूचनाएं आई, जो खबरें आई कि उसका तो मार्केट कितना नीचे चला गया, उसके जो एसेट्स हैं उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, उसके कई साल के प्रॉफिट के बराबर ये अकेला अमाउंट है, तो जो लोग उस बैंक के साथ कामकाज कर रहे हैं, जिन्होंने अपने डिपॉजिट्स रखे हैं, अब उसमें लगाया या उनके वो खातेदार हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मन में एक आशंका हुई कि मेरे पैसे का क्या होगा, कहीं ये बैंक डूब तो नहीं रहा। लेकिन क्योंकि सरकार पीछे थी और वो बार बार अश्योर करना पड़ा, कम से कम इसमें कोई दोहरा हमें नहीं, कोई संशय नहीं होना चाहिए अब कि इस तरह की जो बड़ी घटनाएं हुई उससे लोगों का एक अंदर से कहीं ना कहीं चिंता जरूर हुई, जो कॉमन अकाउंट होल्डर है, क्योंकि उसने पैसा वहां पे एक सुरक्षित जगह को मान करके रखा हुआ है। अभी भी एक बात आप मानिएगा, हमारे देश में जो ज्यादातर उपभोक्ता है उसमें जो उधार लेने वाले लोग हैं वो ज्यादा नहीं है। अभी भी हमें ये समझाया गया बरसों से, और हम लोग जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, जब जनधन खाते खोल करके करोड़ों करोड़ों नए खाते खोले गए कि आपकी जमा बैंक में सुरक्षित है, आप बैंक के साथ व्यवहार करेंगे तो आपके जीवन में कई फायदे आएंगे, तो इसलिए एक बड़ा पहलू अभी भी लोगों के दिमाग में जमा करने वाला है, क्योंकि बोरोवर बहुत लोग नहीं है और बैंक के पास क्षमता जब उधार देने की है उसमें ज्यादातर बड़ी कंपनियां हैं या फिर लोग पर्सनल लोन लेते हैं या फिर अपने घर के लिए, गाड़ियों के लिए वो लेते हैं। इसलिए कभी भी आप देखो कि भले ही हम मिडिल क्लास में या अर्बन सेंटर्स में जब ब्याज दरें बढ़ती हैं उसको लेकर के काफी शोर होता है, बातें होती हैं, लेकिन उसके साथ ही जब जमा पर जो ब्याज मिलता है उसमें जब कमी होती है तो वो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो तब थोड़ा परेशान होता है। फिर उसमें एक पहलू निकल के आता है कि जो घोटाले हुए हैं वो सरकारी बैंकों में ज्यादा हुए हैं, नंबर ऑफ जो इस तरह के फ्रॉड हैं और अगर फ्रॉड का जो एवरेज आउट करें, अभी जो नेगेटिव न्यूज में जो बैंक है तो उसमें इवन जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसमें भी हुए हैं, लेकिन अगर साइज देखेंगे एक एक मसले का ओवरऑल में उसमें पीएनबी का स्तर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब साफ साफ है कि जो प्रबंधन हो रहा है बैंक का या जो नियामक है या जो उसके अंदर जो सिस्टम को क्रॉस चेक करने वाली जो प्रक्रिया है वो इंटरनल ऑडिट हो वो एक्सटर्नल ऑडिट हो वो कहीं ना कहीं उसमें बड़ी खामियां हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए जो कल्प्रिट है उनमें उनका अरेस्ट हो रहा है जांच हो रही है ये प्रक्रिया चलेगी लंबी चलेगी लेकिन उसके साथ में जो है हमें कहीं ना कहीं जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं डिपार्टमेंट और हमारी सरकार वो कुछ इस तरीके के कदम जरूर उन्हें लगातार और जल्दी उठाने चाहिए कि जो देश की बड़ी तादाद है बड़ी आबादी है जो कि इन बैंकों के ग्राहक है उनमें भरोसा और मजबूत हो।
आपको क्या लगता है कि इसकी कड़ियां और इसकी पूरी लिंकेज कितनी दूर तक जाएगी क्योंकि लोग काफी परेशान हैं, लोग अपने अकाउंट्स शिफ्ट कर चुके हैं दूसरे बैंकों में। आप अगर देखें तो नीतिगत सिर्फ 1 लाख रुपए का कवरेज होता है, यदि वो बैंक फेल हो जाए तो बैंक आपको केवल 1 लाख रुपया देगा, बाकी सारा आपका पैसा डूब सकता है। हालांकि अभी आज तक किसी भी बैंक में भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है लेकिन एक हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, जिन लोगों के अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है उन्हें क्या करना चाहिए?
ये देखिए जब ये घोटाला आया उसके पहले जो कानून में बदलाव की बात थी डिपॉजिटर्स से संबंधित जो नियम था उसको लेकर के काफी चर्चा हुई, कानून में सरकार बदलाव चाहती थी उसको लेकर के कुछ लोगों ने काफी क्रिटिकल बातें की, कुछ लोगों ने उसके सपोर्ट में बातें की कि अभी तक जो आपकी जो इंश्योरेंस आपका डिपॉजिट्स का है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक ऐसी बहस चल रही थी उसी के बीच में ये प्रकरण हो जाता है। इस तरह से देखिए आप, तो किसी ने मान लिया अपना रिटायरमेंट की जमा पूंजी को फिक्स डिपॉजिट के लिए वहां 15 लाख या 10 लाख या छोटा एम्प्लॉई है तो उसने 5 लाख रख दिया, तो उसके जीवन की जमा पूंजी है, उसके किसी संकट के समय काम आने वाला वो पैसा है, तो उसमें कहीं ना कहीं डर जो है कि मेरा पैसा डूब जाएगा क्या, अभी ये सामने है कल को कुछ और आएगा क्या। तो ये जो आपने कहा कि कुछ लोगों ने अकाउंट ट्रांसफर करने की जो बात है जरूर हुआ होगा, इन जनरल ये टेंडेंसी रहती है। मैं व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे कहूं कि मेरी वाइफ ने भी कहा कि वहां कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है हमारे डिपॉजिट्स का क्या होगा, तो ये कि हर आदमी के अंदर एक सवाल गया। लेकिन मेरा मानना है कि शायद अभी कोई वो समय नहीं आया कि हम लोग इतनी चिंता करें पीएनबी को लेकर के कि वहां से हम अकाउंट ट्रांसफर करने लगे। लेकिन होता क्या है कि जनमानस में कुछ ऐसी जब धारणा आती है तो कहीं ना कहीं आदमी सोचता है कि मैं समय रहते एक ऐसा कदम उठाऊं कि मुझे बाद में जाकर के कोई दिक्कत ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी परिस्थिति बनी है बैंक को लेकर।
भट्टाचार्य जी, अभी सरकार पूरी तरह से बैंकों के पीछे डटी हुई है और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा कदम कोई भी बैंक उठाएगा। जैसा हरवीर जी ने कहा, लोगों का विश्वास इन संस्थाओं में डगमगाए, कोई चीज जल्दबाजी में करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। लेकिन अगर हम पूरी बैंकिंग व्यवस्था को देखें तो हमारे देश में क्या बैंकिंग व्यवस्था ऐसी स्थिति में है कि उसका आधार ही एक तरह से स्खलित हो जाए या आधार हिल जाए?
इसके बारे में साफ साफ कह दूं कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था की अवस्था इतनी संगीन नहीं हुई है कि हमारी लोगों की जो एक विश्वास आधार स्खलित होने वाली है। हरवीर सिंह ने जो कहा मैं उसके बारे में और भी कहूंगा, हालांकि कानून के अनुसार 1 लाख रुपए की डिपॉजिट की इंश्योरेंस हर डिपॉजिटर को है, पर 1969 के बैंक नेशनलाइजेशन के बाद अभी तक कोई बैंक इस देश में फेल नहीं हुई और फेल नहीं होने दिया गया। अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक फेल होने के लायक हो गई थी, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, पर उसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवीन करके एक पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मर्ज कर दिया था। तो हमारी देश की आप कह सकते हैं कि सत्ता की प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति ये है कि 1950 और 60 के पहले दशक में जो हमने 2-3 बैंकों की फेल होने की देखी थी वो फेलियर बहुत बड़ा एक धक्का है, और वो ना कि एक इकोनॉमिक धक्का है वो एक पॉलिटिकल धक्का भी है। तो मैं ये मानता हूं कि कोई सरकार इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार एक बैंक को फेल होने दे। नंबर वन, एक सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट आ गई है कि टैक्स पेयर के पैसों से इन बैंकों को बचाया जाएगा, और इस नियम में मैं मानता हूं कि हर राजनीतिक दल से इसका पूरा कंसेंसस आप मान लीजिए है। कोई राजनीतिक पार्टी जो सत्ताधारी है वो
एक मतैक्य है,
मतैक्य है पूरा, क्योंकि एक बैंक की परफॉर्मेंस अगर खराब होती है, उसकी अगर एनपीए बढ़ जाती है, उसमें अगर फ्रॉड होता है, तो उसका धक्का सरकार को लेना पड़ता है, और वो सरकार का धक्का लेने का मतलब टैक्स पेयर, आम जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए सुधार की आपने कार्यक्रम जो कही, वो सुधार की बहुत सख्त जरूरत है। और इस वक्त मानसिक अवस्था जो है लोगों में, बैंकों में, जिस तरह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपना काम कर रही है, पर मुझे डर ये है कि हम ऐसे स्थिति में न पहुंच जाए जहां पे हमारी बैंकिंग अवस्था के ऊपर जो एक आस्था थी उसमें कोई हानि पहुंचे। बैंकिंग व्यवस्था क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट के ऊपर चलती है, तो सरकार को यह भी देखना है कि जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है या जो भी गलत काम किया उनको तो जरूर कानून के दायरे में ले ले, पर ऐसा न हो उसका एक कोलैटरल डैमेज जिसे कहते हैं हम, से बैंकिंग व्यवस्था में क्रेडिबिलिटी की कमी हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल सिस्टम है, और एक बार अगर क्रेडिबिलिटी लैप्स हो जाए, मैं मानता हूं कि सारी इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट आ सकता है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मंदी आ रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में बहुत सचेतन रहना है, और सचेतन रह के रिफॉर्म के जो काम बाकी हैं उनमें सटीक होकर काम करना है।
सुधार का एक पहलू ये भी था, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन जी कह रहे हैं, कि निजीकरण एक तरीका है जिससे कि बैंकों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इसके लिए राजनीतिक कंसेंसस चाहिए, जो कि इस समय नहीं है। खंडन तो नहीं है, लेकिन एक तरह से उन्होंने इसको नकारा है। निजीकरण के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए? निजीकरण क्या वाकई एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे कि चीजें सब ठीक हो जाएंगी? बस
आपने बहुत सही शब्दों का प्रयोग किया यहाँ पे। अगर आप निजीकरण ही करें और आप सोचें कि बैंकों के सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, तो मैं मानता हूं कि हम अपनी ही एक दुनिया में रहेंगे, हम रियल दुनिया में नहीं है हम। क्योंकि निजीकरण जरूर एक समाधान हो सकता है, पर उसके साथ साथ हमें नियामक सुधार, इंटरनल मैनेजमेंट, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों में धांधलीबाजी नहीं हो सकती। ये हमारी एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर की बात है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इंटरनल ऑडिट स्ट्रक्चर की बात है। जैसे सरकार ने अभी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का यह गठन किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और भी सुदृढ़ और सशक्त करना है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास काफी उत्तरदायित्व है। वो मॉनेटरी पॉलिसी देखती है, वो बैंकों का रेगुलेटर है, वो पेंशन फंड देखती है, वो सरकार की डेट मैनेजमेंट भी देखती है, तो काफी सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहे हैं। बहुत लोगों का कहना यह है कि नियामक संगठनों की जो सुधार होनी चाहिए उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लाया जाए, जैसे कि उनकी जो उत्तरदायित्व जो है वो सीमित की जाए सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और बैंकिंग रेगुलेटर के नाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही ऐसी कोई समिति बनाई जाए जो बैंकों की रेगुलेशन कर सके। मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ निजीकरण से मेरा मानना ये नहीं है कि समस्या समाधान हो जाएगी। निजीकरण एक अस्त्र है, पर यह ब्रह्मास्त्र नहीं है।
हरदीप जी, अगर हम एनपीए के मामले पर आएं, हमारे पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस सोचता है कि सार्वजनिक पैसा अपना ही पैसा है, तो इसको अपने घर पे रखो, इसको वापस देने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से हमारे देश के बैंकों में, खासतौर से सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें एनपीएस बहुत बढ़ गए हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप किसी को फोन करके कहें कि आप फलां के किसी को लोन दे दीजिए क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूं, और लोन उसको मिल भी जाता है और बैंक मैनेजर को भली भांति मालूम है कि ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा, इस पूरी प्रथा को रोकने में क्या वाकई हम सक्षम हैं?
हमें पूरी तरीके से व्यावसायिक दृष्टि से काम करना चाहिए, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। एक तरीके का बिजनेस है ये कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो उसका आपका फिजिबिलिटी क्या है, व्यावहारिकता क्या है आर्थिक रूप से उसकी। और ये जो आपने कहा कि किसी के कहने पर और किस तरीके से, और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक तो यही आप देखिए कि जो एनपीए की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों का है, जाहिर सी बात है क्योंकि उनका पूरे जो कारोबार है बैंकिंग का देश में उसमें भी बड़ा हिस्सा है, लेकिन फिर भी अनुपात में आप देखेंगे कि सरकारी बैंकों का ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, और दूसरी बड़ी बात है कि जो बड़ा एनपीए है उसमें वो इस तरीके के छोटे लोग उतना नहीं है, उनकी हिस्सेदारी बड़े कॉरपोरेट की हिस्सेदारी ज्यादा है। एक लाख करोड़ का किसी के पास है, 50,000 करोड़ का किसी के पास है, मतलब इतने बड़े बड़े कंपनियां हैं जिनके पास इतना विशाल पैसा है जो कि वापस नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, ये तो मानना पड़ेगा आपको, हम जब लगातार बात करते हैं कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब सिर्फ ये प्राइवेटाइजेशन नहीं कि उसका इक्विटी होल्डिंग प्राइवेट के पास चली जाए, उसके पीछे जो मूल उद्देश्य माना जाता है कि सरकारी हस्तक्षेप कम हो, जो हमारे भवन में लोग बैठे हुए हैं तमाम सारे अधिकारी वो किस तरीके से चलाते हैं, अपने बैंक बोर्ड ब्यूरो भी बनाया, किस तरीके से बैंकों में अपॉइंटमेंट होते हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल सर्कल के लोगों को वहां पर डायरेक्टर्स बनाया जाता है, प्रोफेशनली वो लोग कॉम्पिटेंट हैं क्या। अभी आप देखो कुछ पुराने जो बैंक चेयरमैन को अब इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, तमाम सारी बातें हो रही हैं। जब आप पीछे जाएंगे कि उनको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल दबाव रहा है कि वो उस पोजिशन तक पहुंचे, अब लोगों को वहां पहुंचाने के पीछे भी मकसद होते हैं। फिर बड़े पैमाने पर आप जब कहते हैं कि इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर में करना है, आपको स्टील में करना है, पावर में करना है, आपको रोड्स में भी करना है, और प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। और एक बड़ा एग्जांपल इसमें आता है कि आपने बहुत महंगा स्पेक्ट्रम बेचा प्राइवेट कंपनीज को क्योंकि आपको रेवेन्यू चाहिए था, उनके पास पैसा नहीं, आपने कहा बैंकों से ले लो, तो बैंकों ने क्या किया, इन तमाम जगहों पर पैसा दिया, और कहीं ना कहीं ये मैसेज भी था कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि ये फाइनेंसिंग की जाए। तो अब ऐसे में आप मान सकते हैं कि हमारे तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स माहिर है कि वो गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, जहां 2000 करोड़ का लगना चाहिए यूनिट उसको आप 2500 करोड़ लगा देते हैं, तो पहले दिन उसमें आर्थिक व्यवहारिता रह ही नहीं जाती क्योंकि आपने उसको पहले कोर्स ज्यादा दिखाया है। तो ये बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ हुआ है, और इसीलिए अब आप देखिए जब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉ के ऊपर जब एनसीएलटी में मामले जा रहे हैं, वो सब इवेल्युएशन हो रहा है एसेट्स का, तो आप देखिए कहाँ आकर के वो सब टिक पा रहे हैं। तो इसका मतलब उस वक्त जो ये कर्जे दिए गए तो वो गलत तरीके से दिए गए, और ये जब पहलू आता है इसमें, और फिर ये छोटे आपको कम मिलेंगे। आप देखिए अगर एक व्यक्ति ने एक कार खरीदने के लिए कर्जा लिया, क्लीन है वो कर्जा क्योंकि आपको पता है कार की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, और फिर आप उसको छोड़ते भी नहीं है, कुछ दिन के बाद अगर वो नहीं दे पाते तो आप कम से कम उसकी गाड़ी उठा लाते हैं, लेकिन आपने जो 10-10 हजार करोड़ के 20-20 हजार करोड़ के मैसिव प्रोजेक्ट लगाए उनमें नहीं आप ये सब कर पाते। अभी नया कानून आने के पहले इतनी लंबी प्रक्रिया थी कि 10 साल 15 साल 20 साल चलता रहे, स्क्रैप हो जाए पूरा का पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है, लेकिन पैसा कब आएगा कैसे आएगा कोई रास्ता नहीं था। अब ये थोड़ा रास्ता बना है कि एसेट सेल करके नियमबद्ध और समयबद्ध तरीके से आप मामलों को निपटा सकते हैं। तो ये जो मसला है इसमें तो हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रबंधन है वहां किस प्रक्रिया के जरिए जाकर के उसको वो पोजीशन मिलती है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, उसका स्किल है, और सिर्फ ऊपर क्यों, आप ब्रांच लेवल के अधिकारी तक आपको जाना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट बैंक तो यही करता है, जूनियर लेवल का भी जो अफसर होता है उसके लिए भी हम मानदंड तय है उसके हिसाब से होता है, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको नतीजा वहां पे देखना पड़ता है। लेकिन यहां एक पक्ष जरूर है क्योंकि हमारी सरकारें पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए तमाम सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करती है, हमारे देश में पिछले 30-40 साल से लोन मेलों की परंपरा चलती है, किसी स्कीम के नाम पर आप दे दीजिएगा, उस स्कीम के नाम पर दे दीजिएगा, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे सरकारी बैंक हर तरीके से नाकारा है, आप उसका उपयोग करते हैं, उनके ऊपर आप काम का बोझ डालते हैं, क्या उनकी क्षमता उस काम को साथ में लेकर चलने की है या नहीं है, तो आपको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे कि वाकई वहां पर जो वर्किंग एनवायरमेंट है या जो जिम्मेदारियां आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उनके ऊपर डालते हैं आप उसको प्राइवेट पे तो नहीं डाल सकते। तो ये सारे पहलू अगर हम देखेंगे तब जाकर के सही विश्लेषण हो पाएगा और जो समस्या आज इतनी बड़ी बन गई है उसको हम हल करने की दिशा में चल पाएंगे।
भट्टाचार्य जी, एक तरफ सरकार ने कई नई योजनाएं चालू की हैं, उन्होंने कहा है कि परिवार में अगर आपका कोई नहीं है जो कि बिजनेस करता है तो हम आपकी मदद करेंगे, हम मुद्रा बैंक से आपको लोन देंगे, हम सरकारी बैंक से आपको लोन देंगे, सहकारी बैंक से लोन देंगे जिससे कि आप अपना बिजनेस चालू कर सकें। तो एक तरह से ये एक और प्रेशर प्वाइंट बन जाता है बैंकों पर कि हमें ये लोन देना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोन की भरपाई नहीं कर पाते हैं तो बैंक अपना रिस्क भी देखेगा, और भविष्य के समय में अगर किसी एंटरप्रेन्योर को निवेश करना है या एक नया बिजनेस शुरू करना है तो क्या हम ऐसी परिस्थिति की तरफ पहुंच रहे हैं जहां बैंक इतना सतर्क हो जाएगा कि कैपिटल देगा ही नहीं?
मुद्रा स्कीम वाली जैसे योजनाएं जो हैं वो मेरे ख्याल से दूसरी नजरिए से देखना चाहिए हमें। ये एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार की होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी रूपायन के लिए ऐसी डिसीशन ली जाती हैं। उसके लिए सरकार की भर्तुकी जो होती है डायरेक्ट और 100% होती है, सरकार अपने खजाने से पैसे लेकर उसकी भरपाई करता है। इसके साथ हमें जो कमर्शियल, जिसे हम कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, उसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स को हमें ये चाहिए कि वो कमर्शियल प्रिंसिपल से ही वो बैंकिंग करे। उसमें हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दी है, पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की ऑब्लिगेशन जो है उसमें भी किस तरह से बैंकों की लोनों की जो रिकवरी होगी उसके बारे में भी सारी गाइडलाइंस क्लियरली दिए गए हैं। तो मैं मानता हूं कि जो सरकार अपनी राजनीतिक मंशा से जो काम करना चाहती है उसके करने के लिए खजाने का प्रयोग करे, उसमें बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्टली लाने की कोई जरूरत नहीं है। और कमर्शियल बैंक जो है उनको कमर्शियल प्रिंसिपल से चलने दें, क्योंकि 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन जो हुआ था उसका बहुत बड़ा एक लाभ लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का फाइनेंसिंग हो गया। पर मुझे लगता है अब समय ये आ गया है कि ऐसे स्कीमों का आइसोलेट कर दिया जाए जिससे कि इकोनॉमी में इसका कोई असर ना आए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारे देश एक विकासशील देश होने के बावजूद बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर निर्भरशीलता है बहुत ज्यादा है। हमें इस तरफ देखना है जिससे कि हमारी अर्थनीति बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर कम निर्भरशील हो, जिसे हम कहते हैं कॉरपोरेट डेट मार्केट की वो एक बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि पूंजीपति जो हैं वो सिर्फ बैंकों के पास ही ना देखे, जिससे कि उनकी पूंजी आए या वर्किंग कैपिटल आए या सीड कैपिटल आए। कॉरपोरेट डेट मार्केट एक ऐसा मार्केट जो विदेशों में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारे देश में कॉरपोरेट डेट मार्केट की वृद्धि जो है बहुत ही धीमी हुई है। तो मुझे लगता है कि निजीकरण का एक मसला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रेगुलेशन नियामक सुधार का मसला और कॉरपोरेट डेट का विस्तार का मसला, सारे मसलों का पूरी तरह से इसके ऊपर बहस हो, आलोचना हो, जिससे कि हम एक अच्छी दिशा में पहुंच सकते हैं।
पुनर्पूंजीकरण के बारे में आप क्या कहेंगे?
हमारे जो बैंक हैं उनको बेसल नॉर्म्स हैं, उनको पूरा करने के लिए अब क्योंकि सरकार ही उनकी मालिकान है तो उसके ऊपर जिम्मा आता है। दूसरे मौजूदा स्थिति में जो उनके ऊपर जो कंडीशंस हैं, रिजर्व बैंक के जो नियम हैं उनके हिसाब से उनका जो कर्ज लेने की जो क्षमता है वो उतनी ज्यादा नहीं रही थी, तो इसीलिए रिकैपिटलाइजेशन के जरिए प्रोजेक्ट की तरह से लिया है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा इनको हम देंगे क्योंकि उसकी जरूरत है। तो ये तो सरकार एक अपना दायित्व निभा रही है, हालांकि उसके लिए भी एक रास्ता जो अपनाया गया बॉन्ड्स का, उसमें सरकार ने कोशिश की कि बजटरी रूट से पैसा ज्यादा न जाए और बैंक सी मार्केट से जो है पैसा उठाए। तो मेरे ख्याल से इसकी तो जरूरत है और ये तो करना ही होगा।
बैंकों में जिस तरह की विषमताएं, बैंकों में जिस तरह का संकट सामने है वो मेरे ख्याल से एक अस्थायी मामला है और ये सरकार पूरी तरह से अग्रसर है इसका निदान करने में और ये बहुत ही जल्दी हल हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से बैंकों में जो लोगों का विश्वास थोड़ा हिल गया था वो और हिलना नहीं चाहिए, इसके लिए सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है। आप लोग स्टूडियो में आए और आपने श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे वित्तीय विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य और हरवीर सिंह। परिचर्चा का संचालन पत्रकार अदिति फर्णीस कर रही थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।